ओम शांति। आज इस भट्टी के पहले सत्र में हम लकी स्टार्स के बीच में बाप समान सूर्य समान चमकती हुई स्थिति वाले विशेष तीव्र पुरुषार्थी आत्मा आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे सम्मुख हैं, तो हम सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप विश्व की कई आत्माओं की समस्याओं का समाधान करने वाले साकार में हम सबको अव्यक्त बाप दादा का और निराकार शिव बाबा से मधुर मंगल मिलन मनाने की तैयारी करवाने वाले और बाबा के दिए हुए विशेष मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल के प्रैक्टिकल स्वरूप विशेष आत्मा आज हमारे सम्मुख हैं, तो आदरणीय सूर्य भाई से उनके अनमोल वाणी सुनते हैं। आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। तो मास्टर सर्वशक्तिवानी बना दें आज सबको, बनेंगे या हो? मौलियों में एक महावाक्य बहुत आता है, पिछले दो मास में बहुत आया है, आज भी था। तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर माया को जीतते हो। माया प्रबल है ये नहीं कहा जाएगा माया कमजोर है, भगवान को भी कहना पड़ा, वो भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि सभी के मनों पर उसका ही राज है। लेकिन बाबा हमें माया जीत बनाते हैं। दो ही चीजों पे चर्चा करेंगे, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं और मैं विजय रतन हूं इस फीलिंग को, इस स्वमान को बहुत बढ़ाएं। माया को जीतना कठिन होता रहा, सन्यासियों के लिए भी कठिन हो गया। मैं तो मिला बहुतों से, वो खुद बताते थे कि अब सन्यासी मुश्किल से ही पवित्र हैं। मैं तो पूछता था, भाई क्या हालचाल है महामंडलेश्वरों का? मुझे एक राज बता दिया कि जब इन हम लोगों का ब्रह्मचर्य पीरियड होता है साधना का, तब सबको स्ट्रिक्टली पवित्र रहना पड़ता है। किसने सन्यास ले लिया अब वो मुक्त है, वो पवित्र है उसकी मर्जी, न रहे उसकी मर्जी। पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है संसार की। योग बल से पवित्रता का बल आत्माओं में बढ़ता है। हमें अपनी पवित्रता को शक्ति भी बनानी है और पवित्रता के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको भी समाप्त करना है। इसको आनंद बनाना है जीवन का, युद्ध नहीं। युद्ध में विजय के बाद आनंद आता है, पर कईयों को युद्ध के दौरान भी आनंद आता है। माया का युद्ध भी आनंदकारी हो और हमारी विजय हमें परम आनंद का अनुभव कराए। तो पहली चीज, मैं विजयी रतन हूं। स्वीकार करें सभी इसको। ये नहीं विजय माला में तो 108 ही आएंगे, बाकी सब तो नहीं आएंगे। कोई भी आ सकता है विजय माला के लिए। मैं आपको एक राज सुना देता हूं, बाबा का राज है, ध्यान से सुन लेंगे, अनेकों के प्रश्नों का उत्तर है। अंत तक भी विजय माला में कुछ सीटें खाली रखी जाती हैं। कोई तीव्र पुरुषार्थ करके दौड़कर सीट लेना चाहे तो वो ले सकता है। और ध्यान से सुन लें, बिल्कुल अंत तक भी एक सीट खाली रहेगी। कि जब खेल समाप्त हो रहा है तब भी कोई आना चाहे तो वेलकम है। इसलिए कोई ये ना सोचना हम विजयी रतन नहीं बन सकते। जो अपने को विजय रतन मान ले वो विजय रतन बन जाएंगे। इस राज को समझ लें सभी, और जो न माने बहुत नहीं मानते। सभी यहां जो भाई बहने बैठे हैं बहुत सारे, सब अपने अंतर मन में झांको, क्या मुझे विश्वास होता है मैं भी विजयी हूं? बहुत कहेंगे नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, क्लास में मुरली में आता रहता है, 8 घंटे रोज मुझे याद करो। अनेक बाबा के बच्चे लाखों लाखों ये बात सुन के अंदर ही अंदर कह देते हैं अपने को, अपने से नहीं होगा, किसी को सुनता भी नहीं, अपने को ही सुना देते हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं गिने चुने रतन सोचते हैं भगवान कह रहा है तो हमें करना है, उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं। विचार करें, अपने को देखें, अंतर में झांकें, हमारी मेंटेलिटी क्या है, मन कैसा है हमारा, बाबा की बातें सुनकर हमें विश्वास होता है या रिजेक्ट कर देते हैं। बाबा ने कहा क्रोध छोड़ो, कई अंदर ही अंदर रिजेक्ट कर देते हैं। 50 साल तो हो गए, अब क्या छूटेगा। और जो स्वीकार कर ले छोड़ना है उसका छूटेगा, ठीक बात है या नहीं? तो चेक करो अपने को, चेक नहीं अंदर झांको, क्या मुझे नशा है, विश्वास है कि मैं विजय रतन हूं? विजय रतन माना माया पर विजय, कोई बाबा नहीं चुनेगा ये 1 नंबर ये 2 नंबर, जो माया को जीतेंगे वो विजय रतन है। काम को भी जीतना है, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा सब मोहमत्व, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सबसे गहरी जड़ें हैं मोह और ममत्व की, आसक्तियों की, उसको जीतना पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कहां कहां हमारा मोह और आसक्तियां बनी हुई हैं। ये नहीं माताओं में मोह है, भाइयों में नहीं है, हर प्राणी में मोह है। चींटी को भी आप मारने लगो जान बचा के भागेगी, मच्छर को जरा मारो भागेगा, क्यों? जान से मोह है। हर मनुष्य में, हर प्राणी में, पशु पक्षी में मोह है। तो हमें, मैं विजय रतन हूं, दें अपने को ये गुड फीलिंग। अब दोनों बातों को ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्या होगा इससे? लाखों लोगों को फायदा हो गया। मैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू किया था, क्योंकि एक बात सुनी थी बाबा की मुरली में बहुत बहुत पहले, आपने नहीं सुनी है वो। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। एक व्यक्ति गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, वो सोचता है कोई बात नहीं, टूट गई जुट जाएगी, अब बैठे बैठे लेटे लेटे योग लगाएंगे आनंद लेंगे। दूसरा व्यक्ति की हड्डी टूट जाती हो, परेशान, अभी तो कमाई का समय था, हे भगवान क्या पाप किए मैंने, हड्डी तोड़ दी तुमने, उसे भी दोष देंगे, मेरी हड्डी क्यों तोड़ी, और नहीं मिला कोई तुम्हें? उसके लिए वो समस्या है, उसके लिए वो आनंद है। तो जब ये सुना कि समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है, तो मैंने सोचा अगर कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी करेगा। और सबसे शक्तिशाली संकल्प जो मन को शक्ति देता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, है या नहीं? इससे शक्तिशाली संकल्प संसार में कोई नहीं, चारों युगों में। क्या होगा? इसको रटना नहीं है, फील करो, स्वीकार करो। सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली होंगे ही। टाइगर का बच्चा क्या होगा या कुत्ता? टाइगर होगा ना। कहां से आई उसमें शक्ति? बाप से। हम सर्वशक्तिवान की संतान, हम बहुत शक्तिशाली हैं ही। सोचो जिस आत्मा को आग नहीं जला सकती, एटम बम नहीं जला सकता, हाइड्रोजन बम नहीं जला सकता, वो कितनी शक्तिशाली होगी। एटम बम शक्तिशाली है, हाइड्रोजन बम शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकते, तो आत्मा उनसे शक्तिशाली हो गई या नहीं। अपनी शक्तियों को पहचाने सभी, हम बहुत शक्तिशाली हैं। सभी अपने को संकल्प दे दें, स्वीकार कर लें। दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब से कोई आत्मा बाबा का बनती है, माया पर जीत प्राप्त कराने के लिए बाबा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी शक्तियां प्रदान कर देते हैं। तो डबल चीज है। तीसरी चीज, फिर हम सर्वशक्तिवान से योग लगाते लगाते अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलते हैं। हमारी शक्तियां 5-7 डिग्री पर पहुंच गई थी, बाबा ने हाथ रखकर उन्हें बढ़ा दिया। अब योग लगा के हम उन्हें बढ़ाते बढ़ाते 100 पर ले जाएंगे। कैसे मिलेंगी शक्तियां? छोटी सी विधि, ध्यान से सुन लेंगे। हम यहां बैठे हैं, आसमान में सूरज चमक रहा है, अब अमेरिका में चमक गया है, हम देख सकते हैं ना उसको आंख से, दिव्य आंख से, बुद्धि की आंख से। अब यहां से सूरज को देखो, गोला, अग्नि का गोला चमक रहा है, उसकी किरणें फैल रही हैं चारों ओर। जैसे ही आपने उसको देखा, आपका उससे कॉन्टेक्ट हो गया, एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट, एनर्जी का कॉन्टेक्ट, वाइब्रेशंस का कॉन्टेक्ट, उसके वाइब्रेशंस हमें आने लगे। योग में यही विधि काम आती है। हम सर्वशक्तिवान को देखें ऊपर, देख सकते हैं या नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसको देखने के लिए पवित्र नयन चाहिए, ज्ञान से भरपूर बुद्धि चाहिए। उसको देखो, देखते ही हम उससे जुड़ गए और उसकी शक्तियां हमको आने लगेंगी, तो हमारी शक्तियां बढ़ने लगेंगी। अब हमें बहुत सारी शक्तियां मिल गई हैं, बाबा ने भी दे दी हैं, हमारे पास भी थी और योग से भी ले रहे हैं, लेकिन ये शक्तियां अंदर में सोई रहती हैं। ये सबको याद रखना है, वो सोई रहती हैं, हमें उनको जगाना होता है। जैसे आपके पर्स में 10,000 रुपए हों, आप भूल जाएं और आपको दवाई लेनी है दुकान से, दवाई 50 रुपए की है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है के पैसे पर्स में हैं, क्या स्थिति होगी। और आपको याद है मेरे पास 10,000 रुपए, मुझे सारे खर्च करने हैं, तो फटाफट यूज कर लेंगे ना। हमारे पास शक्तियां हैं, सोई हैं, हमें उन्हें जगा के रखना है। कैसे जगाएंगे? हाथ से तो नहीं हिलाई जाएगी। कौन से संकल्प से? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह है इस संकल्प का प्रभाव। अगर सवेरे उठते ही आप इसका चिंतन कर लें, इसको स्वीकार कर लें, तो सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी और ये शक्तियां हमें माया जीत बनाएंगी। इसलिए हमने बहुतों से अभ्यास करा है, सिंपल, जिनका योग नहीं लगता, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को ज्यादा समझते भी नहीं, कि तुम बैठकर सवेरे लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 108 बार, और उससे ही कईयों की चीजें समस्याएं ठीक हो गई। क्योंकि लिखते लिखते देखिए क्या होता है, लिखने से एकाग्रता होती है, तो आत्मा से शक्तियां ब्रेन को जाने लगती हैं, अनेक समस्याएं अनेक बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो सभी अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाया करेंगे, जैसे हम किसी सोए हुए व्यक्ति को आवाज लगाकर जगाते हैं ना, ये अपने अपनी शक्तियों को आवाज देना है। तो मास्टर सर शक्तिवान हो, जग जाओ। शक्तियां सोई रहती हैं तो शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर रहता है। जैसे एक बहुत शक्तिशाली पहलवान जिसे सब डरते हैं, अपना कमरा खोल के, आज घड़ी उतार के, चेन उतार के, पर्स टेबल पे रख के मजे से सो गया है। उसे सब डरते हैं, कोई आएगा नहीं। एक 8 साल का बच्चा देखता है पहलवान आज सोया हुआ है, चुपचाप अंदर जाता है, सब माल उठा लाता है। पहलवान उठता है, किसने गुस्ताखी की? क्योंकि क्योंकि सोया हुआ है। हमारी शक्तियां भी सोई रहेंगी तो माया चोर बनकर चुरा ले जाएगी सब कुछ। इसलिए शक्तियों को जगाते रहना, ठीक है? सब कुमारों को पसंद है शक्तियों को जगा के रखना, वो आपका पहरा देंगी। मैंने बहुत जगह एक अभ्यास कराया, बहुतों ने किया, और आज ही मुझे कोई बता रहा था उसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर हैं, कि अपने घर को रोज रात को सर्वशक्तिवान के संकल्प से, वाइब्रेशन से बांधो। कोई भटकती आत्मा यहाँ आ नहीं सकती, कोई चोर यहाँ आ नहीं सकता, प्रकृति यहाँ तूफान मचा नहीं सकती। संकल्प करो, विधि है, 7 बार संकल्प करो सोने से पहले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और संकल्प की उंगली से 7 घेरे बना दो घर के चारों ओर, संकल्प से 7, और समझ ले आपका घर इस शक्तिशाली प्रभा मंडल के बीच में आ गया। अपने चारों ओर भी ऐसा प्रभा मंडल आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले विनाश काल में ये चीजें बहुत मदद करेंगी, क्योंकि विनाश काल बहुत ही खतरनाक काल है। छोटी मोटी घटनाएं नहीं है वो। बाबा जब कहते हैं खून की नदी बहेंगी, अब सोचो, हमने तो सुना और छोड़ दिया, बहेंगी बहने दो, लेकिन खून की नदी क्या होती है? क्या हो जाएगा इस धरती पर सुनसान? बाबा ने कहा है 25-25 कोस पर दीपक जलेगा। कोस माना आपके 50 किलोमीटर दीपक जलेगा, कोई रहेगा ही नहीं दीपक जलाने वाला, बिजली तो होगी नहीं। तो एक भयानक समय से गुजरने के लिए हमें अपने चारों ओर शक्तिशाली प्रभा मंडल, इंग्लिश में ओरा कहते हैं, इसको निर्माण करना ही चाहिए। रोज कर लें तो बहुत अच्छा, इसको भी अपनी रूटीन बना लें रोज। ये एक एक मिनट का काम है बस। 7 बार संकल्प किया और विजन बनाओ, मेरे चारों ओर शक्तियों का घेरा, प्रभा मंडल बन गया है, और इस प्रभा मंडल में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। विनाश काल में सबसे बड़ी चीज क्या होगी? भय। मनुष्य घर से बाहर निकलेगा, पता नहीं होगा वापिस आएगा या नहीं। लेकिन अगर आप इस प्रभा मंडल के अंदर हैं, तो आप भी सुरक्षित, आपके साथी भी सुरक्षित हो जाएंगे। मैं विजयी रतन हूं, इस फीलिंग को बहुत बढ़ाएं। और ये काम करना चाहिए रोज सवेरे, शाम को भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, पर सवेरे बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमारा अंतर मन जगा रहता है। मैं विजयी रतन हूं स्वीकार करो, अर्थात कल्प कल्प मैंने इस माया पर विजय प्राप्त की है। किसने कहा है ये, बोलो किसने कहा? माताओं को नहीं पता किसने कहा? उसने जो हमारे आदि मध्य अंत को जानता है। अब दोस्त पहलवान ही लड़ रहे हो और एक पहलवान को बता दिया जाए जीत तुम्हारी है, वो ज्योतिषी है बहुत बड़ा, उसने बता दिया तुम्हें गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी या नहीं? दो सेनाएं लड़ रही हों, एक सेना को बता दिया जाए तुम ही विन करोगे, वो बड़ा ज्योतिषी बता दे, उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी ये जानते ही। हमें भगवान ने बता दिया, जो ज्योतिषियों का भी बाप है, क्या बता दिया, कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है। विश्वास है, किस किस को विश्वास है देखूं जरा मैं। अच्छा अब तो आप जग गए हैं पूरी तरह। हमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, तो हमारी माया को जीतने की शक्ति भी जग जाएगी और प्रबल हो जाएगी। इसलिए किसी भी मनोविकार को जीतने के लिए पहला संकल्प, मैं विजय रतन हूं। काम विकार को जीतना है पूरी तरह, मैं काम जीत हूं, दोनों को मिला दो। तीन संकल्प करेंगे, मैं विजय रतन हूं, पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियां जग गई। मैं विजय रतन हूं, अब ये शक्तियां विजय दिलाने में लग गई। मैं काम जीत हूं, काम जीत का नशा बहुत बड़ा है। और चौथा संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, प्योरिटी बढ़ जाएगी। क्रोध को जीतना है, यही टेक्निक यूज करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। शांत हो जाएगा चित्त। क्रोध को जीतने के लिए एक छोटी सी विधि बाबा ने और सिखाई है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो। अपने से बात करेंगे, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। ऐसे ही धीमी गति से, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, रिजेक्ट करो, ये मेरा नहीं है, रावण का है। बाबा तो कहते तुमने रावण की प्रॉपर्टी चुरा ली, रावण केस करेगा, मेरा माल उठा ले गए ये भगवान के बच्चे, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये रावण की प्रॉपर्टी है, रिजेक्ट कर दो। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। प्रेम भी जोड़ना है, प्रेम और शांति है, विजय होने लगेगी। सवेरे उठते ही करेंगे इसी क्रम से, इसी सीक्वेंस में, पांच पांच बार कर लो, पांच बार चित शांत होने लगेगा। इरिटेशन आपको कभी हो, माताओं को बच्चे तंग करने लगे, छोटे बच्चे ज्यादा ही तंग करते हैं ना, काम ही ना करने दें आपको, आपको इरिटेशन होने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, पांच मिनट बैठ के अपने को इस तरह शांत कर लो। क्योंकि ये जो क्रोध है क्या करता है ये, बोलो, जिनको अनुभव है वो तो बता दो कम से कम। ऐसा तो नहीं ना कि किसी को अनुभव नहीं, सबको है। ये अंदर की शक्तियों को नष्ट करता है, ये अंदर की खुशी को खा जाता है, ये एकाग्रता के लिए सबसे बड़ा शत्रु है, ये हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध आएगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी ठीक से, कुछ का कुछ बोलेंगे, कुछ का कुछ सोचेंगे, परेशान हो जाएंगे। क्रोध हमारा संस्कार न रहे, इस पर हमें संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। ऐसी परिस्थिति सिचुएशन तो सबके ही सामने आती है जिसमें मनुष्य को क्रोध आता है, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना इसकी बहुत जरूरत है। इमोशंस माताएं भी समझ लें, इमोशंस जो व्यक्ति बहुत भावुक है, भावुक भावनाएं माताओं में ज्यादा होती हैं, भाइयों में भी होती हैं पर कम। हमें बैलेंस करना है भावना और विवेक का, हमें बैलेंस करना है भावनाओं का और शक्तिशाली स्थिति का। भावनाएं हमें हैं, जो व्यक्ति बहुत भावुक है जल्दी रो लेगा, जो व्यक्ति बहुत भावुक है जल्दी फीलिंग में आएगा, जल्दी उसे क्रोध आएगा, जल्दी ठंडा भी होगा, हमें भावुक होने के साथ साथ पावरफुल भी होना है। होना है या नहीं? भावनाओं से ही काम नहीं चलेगा। रहमदिल हमें बनना है, लेकिन कहीं कहीं रहमदिल हमें थोड़ा भावुक बना के कमजोर भी कर देता है। कोई रास्ते में रो रहा है, हमसे देखा ही नहीं गया, हम भी रोने लगे। किसी की मृत्यु हो गई, माताएं तो रोने जाया भी करती है ना। एक फैशन सा पड़ा हुआ है, रीति बनी हुई है। भले ही रियल नहीं रो रही होंगी, पर घूंघट डाल के हो तो करेंगी। मैं देखता था जब हम छोटे थे, माताएं कहाँ जा रही, मृत्यु हो गई, रोने जा रही हैं। रोने नहीं जाती थी, ऐसे दिखावा करने। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि दूसरे के दुखों में हम दुखी हो जाएं। सोचना है सबको, हमें दूसरों का दुख निवारण करना है तो हमसे जाने चाहिए उन्हें सुखों के वाइब्रेशंस, शक्तियों के वाइब्रेशंस, दूसरों को भी बल मिले, दुख बहुत बढ़ेगा। बाबा के शब्दों में, तुम्हारे अब के दुख तो चींटी के समान है, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। दुखी दुख, चिल्लाहट के अलावा इस सृष्टि पर कुछ नहीं रह जाएगा। एक दिन तो ऐसा लगेगा धरा ही शमशान बन गई है, धर्मराजपुरी बन गई है। ऐसे में हम सबके बीच से कुछ महान आत्माएं वाइब्रेशंस देखकर सभी को सुख देंगी, शांत करेंगी, उन्हें रिलैक्स करेंगी, उन्हें धीरज दिलाएंगी। करना है ये काम, करना है तो इस माया को पूरी जीतना है, क्रोध पर पूरी विजय। मैं पूछना चाहूंगा, बाबा का बनने के बाद, टीवी वाला कहाँ गया, बाबा का बनने के बाद जिस जिसने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया हो, जरा हाथ उठाओ, देख लेना भाई, हाथ दिखाओ इनके, ये विजयी रत्न है, इसलिए आपको बुलाया मैंने। आगे वाले भी हैं, ऐसे नहीं पीछे पीछे का लेना, ऊपर उठाओ हाथ, तब टीवी में आएगा आपका। देखो सबने उठा दिया, टीवी देखते ही तो इतनों ने क्रोध जीत लिया। मैंने इसलिए आपकी वीडियोग्राफी कराई कि लोग आपको देखें, ये ब्रह्मा कुमारियों की ही ऐसी सभा है जहां एक छोटी सभा में भी क्रोध को जीतने वाले कम से कम 60% लोग हैं। बाहर की सभाओं में हाथ उठाएं तो लोग ऐसे ऐसे करेंगे, पीछे ले जाएंगे फिर उठाएंगे धीरे धीरे, कभी थोड़ा है फिर कर लिया, छोड़ा है फिर कर लिया, छूटता ही नहीं है। तो ये बाबा की सभा की ब्यूटी है। पीछे हमारे यहां एक प्रसिद्ध आर्य समाजी और शायद हिंदुस्तान टाइम या नवभारत टाइम दिल्ली के संपादक रहे, वेद प्रताप वैदिक, बड़े फेमस व्यक्ति रहे, जो पाकिस्तान में भी चले गए थे टेररिस्ट से मिलने। बड़ा विवाद हुआ था भारत में, तो हमारे यहां आए थे शायद 2 साल पहले, हमारे किचन में भी आए। तो सभा में बोला, मैंने ऐसी सभा कहीं नहीं देखी जहां 25,000 ब्रह्मचारी बैठे हों। है ना ये ईश्वरीय कार्य का चमत्कार। और वो भी एक कट्टर आर्य समाजी, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का बड़ा प्रचार किया, लेकिन लोग कर नहीं पाए क्योंकि इसके लिए योग युक्त जीवन की आवश्यकता है। जब तक हम सर्वशक्तिवान से न जुड़ें, पवित्र बनने की शक्ति आएगी नहीं। जिसको भी पवित्रता में कठिनाई हो, वो अपने योग के अभ्यास को प्रतिदिन 4 घंटे तक पहुंचाए, प्योरिटी सरल हो जाएगी। कोई सोचे हमने तो प्रतिज्ञा कर ली है बस काम हो गया, प्रतिज्ञा से काम नहीं होगा। प्रतिज्ञा जरूरी है, पर प्रतिज्ञा को निभाने के लिए मिनिमम 4 घंटा रोज ऊपर जुड़े रहना, इस संसार में न रहें ऊपर रहें, ये अभ्यास परम आवश्यक है। हो सकता है मधुबन में जो भी आप भट्टी में आए, कोल्हापुर अमरावती, कोल्हापुर या अकोला, अकोला और अमरावती, हाथ उठाओ अकोला वाले, ठीक है। अमरावती, वाह अमरावती के ज्यादा हैं, इंद्र की राजधानी हैं, कल आएंगे। अच्छा अमरावती तो इंद्र की राजधानी भी थी ना, आप वाली तो नहीं थी। तो इस माया को चैलेंज भी किया है और इसको जीतना है, ध्यान ये देना है। बहुत सुंदर गुह्य बात अटेंशन देने की, पवित्र बनने के बाद यदि कोई आत्मा परचिंतन में रहे, तेरे मेरे में रहे, ईर्ष्या द्वेष में रहे, दूसरों को ही देखने में लग जाए, अपने को देखना भूल जाए, तो उसकी पवित्रता न तो दिव्यता में बदलती न शक्ति में बदलती। हमने अपनी प्योरिटी को दिव्यता में बदलना है, प्योरिटी इज डिविनिटी, और अपनी प्योरिटी को माइट बनाना, प्योरिटी इज माइट, शक्ति बना देना है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी तरह के व्यर्थ को पहचाने और स्वयं को उससे मुक्त करें। व्यर्थ बहुत है संसार में, तो व्यर्थ ही व्यर्थ है 95%। ब्राह्मणों में भी कईयों के जीवन में व्यर्थ ज्यादा है, जिनको अपनी प्योरिटी की चमक बढ़ानी है। देखो हमारी प्योरिटी की चमक कैसी होगी, जैसे कल पूर्णिमा का चंद्रमा था, देखा था किसी ने, एक चंद्रमा भी संसार को रोशन करता है ना, रात को खींचता है सबके मन को। पवित्रता के तेज से संपन्न आत्माएं पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बन जाएंगी। इसलिए प्योरिटी को ब्रह्मचर्य तक सीमित न करके प्योरिटी को अपनी शक्ति बना देना है। वासनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएं, इसके लिए 4 घंटे योग डेली कर्म करते हुए, आप 4 घंटे बैठे ये नहीं, कर्म करते हुए। तो मधुबन में आकर सभी प्लान बनाना, अपने अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करना। मैं आपको चिंतन दे रहा हूं, जो लिख रहे हैं डायरी पेन खोल लो। संगम युग पर क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, चिंतन करना यहां मधुबन में आकर। संगम युग पर हमें क्या क्या करना चाहिए इसकी लिस्ट बना लेना, 12 पॉइंट अच्छे निकल जाएंगे। संगम युग पर मुझे ये कर लेना चाहिए, जो केवल अब किया जा सकता है, अब के अलावा कभी नहीं। जब आप ज्ञान का गहराई से चिंतन करेंगे, यहां आपका चिंतन चलेगा, क्योंकि आपको क्लासेज मिलेंगे। चिंतन करना संगम युग पर क्या क्या लिया जा सकता है बाबा से, एक विजन बनाना, विजन माना चित्र। बाप दादा सामने खड़े हैं और कह रहे हैं बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। जो मुरलियां ध्यान से सुनते हैं ये महावाक्य साकार मुरलियों में आता रहता है, मेरे से जो चाहो ले लो। क्या क्या लेना है मुझे और उसकी प्लानिंग क्या है, ये अच्छी तरह चिंतन कर लो। यहां समय तेजी से बदल रहा है, मुझे आजकल तेज और गहरी प्रेरणाएं हैं कि अब संगम युग का भी खेल बदलेगा, क्योंकि जिस गति से संगम युग चल रहा है, जिस गति से स्थापना का कार्य हम कर रहे हैं, जिस गति से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस गति से तो ये युग बदलेगा नहीं, तो बी वेरी ओपन, या बदल जाएगा इस गति से ही कलयुग सतयुग में, कदापि नहीं, 1000 साल चाहिए। इसलिए प्रभु प्लानिंग कुछ और है, अब मुझे तो पता चल गया उसका, आपको भी चल सकता है। अब उसकी प्लानिंग कुछ और है, अगले 10 सालों में ही चमत्कारिक रूप से युग परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करने की 10-12 साल ही लगेंगे। ये खेल तेजी से अब बदलेगा। अब जो हम सेवाओं में बहुत मेहनत कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास ही आएंगे लाखों लाखों, दो हमें, जो हम कहेंगे सत्य वचन महाराज, हम कहेंगे तुम आत्मा हो, जी सर मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा के बच्चे हो वो ये हो, जी हाँ, योग लगाओ हो गया, चलो आगे बढ़ो, ये होने वाला। बाबा ने कहा एक एक मिनट में कोर्स देंगे, दृष्टि से कोर्स देंगे। एक बात मुझे और कहनी है, कोई महात्मा बुद्ध की बात सुना रहा था मैंने, सिक्योरिटी ऑफिसर आए हुए थे ना, तो उनकी एक क्लास कराई, तो एक बड़ा ऑफिसर खड़ा हुआ कि महात्मा बुद्ध का बड़ा नाम हुआ था, एक युवक जो बहुत तेज तराक था, महात्मा बुद्ध को पहचानता नहीं था, कौन है महात्मा बुद्ध, उसी के पास पहुंच गया प्रश्न पूछने, तुम कौन हो, तुम देवता हो क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं। तुम फरिश्ते हो क्या? नहीं। उसे गुस्सा आया, तो तुम कौन हो आखिर? उसने कहा मैं श्रेष्ठ दर्पण हूं, देख लो अपना चेहरा मुझ में। ये बात बाबा ने हम सब के लिए भी कही हुई है। तुम्हारा ये मस्तक टीवी की स्क्रीन बन जाएगा, लोग अपने भाग्य को तुम्हारे मस्तक रूपी दर्पण में भी देखा करेंगे। ये दर्पण भी बन जाएगा और टीवी स्क्रीन भी, जिसे लिखत दिखाई दिया करेगी। हर व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करेगा। वो समय आ गया है जिसकी चर्चा बाबा ने 69 और 70 की मूल्यों में की हुई है। तो तेजी से युग बदलेगा और तेजी से बाबा का ये महान यज्ञ तीर्थ बनेगा। आज था ना मुरली में, भारत सबसे बड़ा तीर्थ, सारा संसार भारत की ओर ही देखेगा। अब जो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं ना विदेश के, भारत में वो यहीं आया करेंगे आबू में, और कहीं की टिकट नहीं मिलेगी, केवल आबू की मिलेगी। तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कार्य, अगर आप ये इंग्लिश का शब्द समझते हो। बाबा ने दो बातें कही हैं साकार मूल्यों में, इस धरा पर पवित्रता का रिवोल्यूशन हो जाएगा, पवित्रता की क्रांति। हर व्यक्ति पवित्र बनने के लिए तैयार होगा, हर धर्म की हर आत्मा, क्योंकि बिना पवित्र बने कोई घर नहीं जा सकेगा। और इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन हो जाएगा, आध्यात्मिक क्रांति, रूहानी क्रांति। सब जगह चर्चाई आत्मा परमात्मा की, योग की, पवित्रता की, ये सब होने लगेगी। तो इस समय के हम समीप आ रहे हैं। अब ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा। संगम युग के 100 साल को अब थोड़ा ही समय, 18 ही साल बचे हैं ना, इस सालों में है स्थापना और विनाश के दोनों कार्य पूर्ण होने हैं, और प्रकृति को साइलेंट भी होना है। आज बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के, तुम इस भारत को, बोलो किसको याद है, सुप्रीम शांति का देश बना देते हो। कौन बनाएंगे? जो बहुत अच्छा अभ्यास देश से न्यारे होने का करेंगे, उनकी शांति की तरंगे इस भारत को परम शांति से संपन्न देश बना देगी। फिर 2 युग 3 युग तक वो शांति चलती रहेगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है, इसलिए माया को जीतकर अपनी बुद्धि को स्थिर करें, ताकि योग बल से हम इस संसार का कल्याण कर सके। एक होमवर्क और करना है आप सभी को, यहाँ रहते हुए लिख लें, वो भी 2 खाने बना लेना अपने कागज पर। एक तरफ लिखना मुझे ये करना है, दूसरी तरफ उसका अपोजिट ये नहीं करना है। उदाहरण के रूप से मुझे स्वचिंतन ही करना है पर चिंतन नहीं, मुझे अपने को देखना है दूसरों को नहीं, मुझे पवित्रता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना है अपवित्रता की ओर देखना भी नहीं है, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाना है, थोड़ा भाग्य लेकर राजी नहीं होना है, मुझे बाबा से संपूर्ण दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है जो जन्म जन्म मेरे साथ चले, हल्की बुद्धि नहीं। ये लेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो जागृति आएगी आपके अंदर, आपकी चेतना जगेगी। और सभी को ये मालूम रहना चाहिए, यदि मनुष्य इस तरह अपने लिए होमवर्क करने लगे तो उसे पता चलेगा कि जितना पुरुषार्थ वो अब कर रहा है उससे कम से कम डबल तो आराम से कर ही सकता है। सोच लेना सभी, डबल हो सकता आराम से, वही जो जो कुछ अब है आपके पास कम समय है उसी समय में सुंदर अभ्यास किए जा सकते हैं। तो बहुत सारी क्लासेज आप सबको भट्टी वालों को यहाँ मिलेंगी और सभी अपनी सुंदर प्लानिंग भी करेंगे बहुत अच्छी। आप यहाँ आए हैं तो जैसे आए हैं आज वैसे बोलो भाई बोलो वैसे जाएंगे नहीं, कुछ और होकर जाएंगे। और जो बन के जाएंगे वो अविनाशी अमर, ऐसे नहीं वो ट्रेन में बैठते ही छूट जाएगा, वो अविनाशी। और अविनाशी उस मनुष्य का होता है जो अपने पुरुषार्थ की कुछ अच्छी प्लानिंग कर लेता है, बिना प्लानिंग के कुछ होता नहीं। आप मधुबन में भी आए, आपने 3 मास पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी या नहीं, किसने पैसे भी जमा किए होंगे, छुट्टी भी का भी इंतजाम किया होगा, घरों के काम भी समेटे होंगे, रिजर्वेशन भी कराई होगी, और जिस दिन आना उस दिन भी क्या क्या किया होगा। बिना प्लानिंग के आप यहाँ आ सकते थे? बिना प्लानिंग के हम अपनी महान मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल है, जो किया जा सकता है, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसकी प्लानिंग करो, जो नहीं हो सकता उसे छोड़ देना। आप सोचे मुझे तो 3 बजे उठना ही चाहिए रोज, उठ नहीं सकते छोड़ो उसे, जब आराम से उठ सकते हैं, अब कईयों को सोना ही 1 बजे होता है, वो कहें 4 बजे उठ के मुझे योग लगाना ही है, अब न योग लगता न नींद आती, दोनों चले जाते हैं, योग में भी थोड़े सो लेते हैं और सोए हुए भी थोड़ा योग कर लेते हैं, उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल है, जो संभव है, जो किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग करके जाना, ठीक है? कर लेंगे ना तो स्पीड तेज हो जाएगी और मधुबन की यात्रा यादगार। ओम शांति।
प्रेम की।